कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में बाइबल अध्ययन कर रहे हैं यहोशू नामक पुस्तक की। इस पुस्तक का नाम इसराइलियों के एक वीर पुरुष यहोशू के नाम पर रखा गया, जिसका इब्रानी भाषा में अर्थ है यहोवा उद्धार। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि इस पुस्तक के अध्ययन से आप सभी को आत्मिक लाभ अवश्य पहुँच रहा होगा। तो बराबर परमेश्वर के वचन के अध्ययन में हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर इसराइल को प्रतिज्ञा के देश में लाया और प्रत्येक गोत्र को उसके गोत्र के अनुसार स्थान प्रदान किया। हमने यहोशू का बड़प्पन भी देखा कि उसने अपने लिए सबसे निकृष्ट अर्थात निर्जन स्थान को चुना। फिर परमेश्वर ने यहोशू को आदेश दिया कि वह शरण नगर बनवाए, जिससे कि कोई मनुष्य यदि दुर्घटनावश हत्या कर बैठे तो बदला लेने वाले से बचने के लिए वहां चला जाए। यह शरण नगर आज भी है, परंतु विश्वासियों के लिए मसीह में कि परमेश्वर के बदले की आग से बच जाए। मेरे मित्रों, आइए हम आज इससे आगे बढ़ने से पहले अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम पर अपने अनुग्रह प्रदान करें और अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें, ताकि जो कुछ भी आज हम सीखते हैं हमारे जीवन के लिए लाभकारी ठहरने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो अपने जीवन से थक कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु, आप उन सब पर अपनी दया दृष्टि करें, इस बात को वे जाने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं। हाँ प्रभु, आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हर एक भाई बहनों को आप आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमने यह देखा था कि लेवियों के भाग में भूमि नहीं थी, परंतु उन्हें अन्य गोत्रों के मध्य नगर दिए गए थे और उन्हें अलग किया गया था ताकि वे सेवा आसानी से कर सकें, क्योंकि वे याजक थे। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुष इलियाजर याजक, नून के पुत्र यहोशू, इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दिलाई थी। मेरे मित्रों, ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय की ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या थी। लेवियों को 40 नगर दिए जाने थे, दान से बेरशिबा दक्षिण तक। आइए हम देखें भूमि आवंटन का कार्य अब पूरा हो चुका है और आगे हम पढ़ते हैं यहोशू 21 अध्याय उसके 43 और 44 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार यहोवा ने इसराइलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए, और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। मेरे मित्रों, इसराइल अब प्रतिज्ञा के देश में बस गया था, परंतु वह स्थान प्रतिज्ञा के देश का मात्र एक छोटा सा टुकड़ा था। अब उन्हें यदि और अधिक भूमि चाहिए थी तो आवश्यक था कि वे आगे बढ़कर उस पर अधिकार करें। नियम वही था कि जहां जहां उनका पांव पड़ेगा वह स्थान परमेश्वर ने उन्हें दे दिया है। इस समय इसराइल के अधिकार में जो स्थान था वह बैरियों से सुरक्षित था और वे विश्राम कर सकते थे। मेरे मित्रों, आज हमारा विश्राम उद्धार का विश्राम है जिसकी हमें गहन आवश्यकता है। आज का युग तनाव और बोझ का युग है और एक विश्वासी को यदि कोई आवश्यकता है तो वह है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का। न्यायों की पुस्तक में हम देखेंगे कि इसराइल अपने बैरियों से प्रतिज्ञा का संपूर्ण देश छुड़ाने में चूक गया था। क्यों? अपने अविश्वास के कारण। यहोशु भी उन्हें आवश्यक विश्राम प्रदान नहीं कर पाया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उसके सामर्थ का सहारा नहीं लिया। मेरे मित्रों, इब्रानियों का लेखक हमें चेतावनी देता है कि हम इसराइल की भूल को न दोहराएं। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 9 से 11 पद में वह कहता है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। आप और मैं उस विश्राम में कैसे प्रवेश करते हैं? विश्वास के द्वारा। मेरे मित्रों, यही एक मार्ग है। मसीह जब इस पृथ्वी पर था तब इसराइल ने उसे अस्वीकार किया और उसने उनके नगरों को स्वीकार नहीं किया। उसने व्यक्तिगत निमंत्रण दिया जो आज भी हमारे लिए है। मत्तीरचि सुसमाचार में वह कहता है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे मित्रों, यह विश्राम उद्धार का विश्राम है। यहोशू के इस अध्याय में इसराइल ने विश्राम में प्रवेश कर लिया था, चाहे वह अस्थाई ही था, परमेश्वर ने उन्हें यह विश्राम दिया था। मित्रों, एक लंबी थका देने वाली जंगल यात्रा, फिर युद्ध और फिर अपने अपने उपनिवेश बसाने का परिश्रम और अंत में विश्राम, कैसा सुखद अनुभव रहा होगा। उस भूमि को जोतना और उसके फल खाना कैसा ही उत्साहवर्धक रहा होगा। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 22 से जारी रखेंगे और इस अध्याय का विषय है यर्दन पार के दो गोत्र और आधा गोत्र मनश्शे घर लौटते हैं। वे साक्षी की वेदी तैयार करते हैं। मित्रों, ढाई गोत्रों ने अन्य गोत्रों के साथ अपने भूभाग की मांग नहीं की थी। वे यर्दन के पूरे क्षेत्र में बस गए थे। यदि वे चाहते तो अपनी सेना के बल पर प्रतिज्ञा के देश पर अपने लिए अधिकार कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने अन्य गोत्रों के लिए किया था। परंतु जब सब शांत हो गया तब वे घर लौटने के लिए मुक्त थे। हम यहोशू के पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पढ़ते हैं, उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवा कर कहा, जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दत में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। मेरे मित्रों, उन्हें विदा करते समय यहोशू उनके अच्छे काम के लिए उन्हें सराहता है। वह कहता है कि अपने भाइयों की सहायता करके उन्होंने अच्छा काम किया है, परंतु वह उन्हें चेतावनी भी देता है। हम यहोशू 22 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। मेरे मित्रों, यहोशू उन्हें चेतावनी देता है कि उन्होंने गलत स्थान चुना है, परंतु मूसा की व्यवस्था का पालन करने में उनसे चूक ना हो। उन्हें चेतावनी देने के बाद यहोशु आशीर्वाद के साथ उन्हें विदा करता है। यहोशु 22 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तब यहोशु ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। तब हम देखते हैं वे 2.5 गोत्र घर लौट गए। यहोशु 22 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, और जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। उन्होंने यह वेदी यरदन के पश्चिमी तट पर बनाई। देखने योग्य विचित्र अभिव्यक्ति है, परंतु उद्देश्य यह था कि वह बहुत दूर से दिखाई दे। वह एक भव्य रचना थी। मेरे मित्रों, बाइबल के विद्वानों ने यरदन के पूर्वी तट पर उसकी खोज की, परंतु एक पुरातत्व वैज्ञानिक ने उसे पश्चिमी तट पर खोज निकाला। इसके खंडहर आज भी विद्यमान है। वह देखने में एक महान वेदी है। इसके निर्माण में उनका एक उद्देश्य था कि जब अन्य गोत्रों ने सुना कि उन्होंने यह वेदी बनाई है, तो वे शीलो में एकत्र हुए। आइए हम यहोशु 22 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। जब इसराइलियों ने यह सुना, तब इसराइलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। ध्यान दीजिए कि उन्होंने कल्पना की कि इन 2.5 गोत्रों ने बलि चढ़ाने के लिए यह वेदी बनाई है, अर्थात देश का बंटवारा किया गया है। हम यहोशु 22 उसके 16 और 17 पद में आगे पढ़ते हैं, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारे दृष्टि में एक छोटी बात है? मेरे मित्रों, उनके विचार में यह वेदी बाल उपासना के लिए थी। उन्हें वह समय स्मरण आया जब विलाम ने उन्हें मुआबी स्त्रियों से विवाह करने के छल में फंसाकर आत्मिक व्यभिचार करवाया था। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें कठोर दंड दिया था, अतः उन्हें भय था कि ऐसा फिर ना हो। मित्रों, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 22 अध्याय उसके 21 से 23 पद में लिखा हुआ है, तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया कि यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इसराइली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के व उसका विश्वास घात करके हमने यह काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित न छोड़े। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें, व इसलिए कि हम उस होम बलि, अन्न बलि व मेल बलि को चढ़ाए, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। मेरे मित्रों, उनकी यह वेदी बलि चढ़ाने के उद्देश्य नहीं थी, यह तो एक स्मारक थी कि वे इसराइल राष्ट्र का एक अंग है। संभवतः वह होम बलि की वेदी का विशाल रूप था, परंतु बलि के लिए नहीं। यहोशू 22 उसके 24 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे कि तुमको इसराइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। मेरे मित्रों, वे 2.5 गोत्र अपने उद्देश्य में सत्यनिष्ठ थे और अन्य 9 गोत्रों ने उसकी बात मान ली। हम यहोशू 22 उसके 31 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और एलीआजर याजक के पुत्र पिनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेइयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने यह जान लिया है कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इसराइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। मेरे मित्रों, इसराइल ने स्वीकार किया कि उन्होंने दोष लगाने में शीघ्रता की है। इससे मुझे उनका स्मरण होता है जो अधीर हैं। हम ऐसी बातें कहते हैं और ऐसे काम करते हैं जो हम नहीं हैं, अर्थात हमें नहीं करना है। हम सोचते हैं कि हम वचन की रक्षा कर रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसराइल ने भाइयों से युद्ध करने की विचार करके भूल की। हम यहोशू 22 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर कि यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा गया। मित्रों, ऊपरी तौर पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस वेदी का निर्माण एक अच्छा विचार था और अनेक टीकाकारों ने इस पर स्वीकृति भी दी है और मुहर भी लगा दी है। तथापि इस वेदी एद पर गहराई से विचार करें। मिलाप वाले तंबू में बलि चढ़ाने के लिए पीतल की वेदी बनी हुई थी और उसके अतिरिक्त अन्य वेदी रखना वर्जित था, अर्थात मना था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 12 अध्याय उसके 27 पद में आदेश है कि वहां अपने होम बलियों के मांस और लहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना और मेल बलियों का लहू उसकी वेदी पर उंडेल कर उनका मांस खाना। मेरे मित्रों, अन्य सब वेदियां उन्हें ढा देनी थी। जैसे निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसके 13 पद में इसकी आज्ञा दी गई है, लिखा है, उनकी वेदियों को गिरा देना, उनके लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट डालना। परंतु व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 27 और उसके 4-8 पद में अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। परमेश्वर ने इसराइल से कहा था कि वे यर्दन नदी से 12 पत्थर उठाकर उनसे एक स्मारक बनाए। अब ये ढाई गोत्र यर्दन पार थे और यर्दन उन्हें अपने भाइयों से अलग करती थी। यह वेदी इस विभाजन का प्रतीक थी। यह वेदी मुख्य प्रमाण थी कि वे विभाजित हैं। मेरे मित्रों, यह भावी विभाजन की प्रावर्तक थी। इस समय इसराइल विभाजित था, एक ओर 9.5 गोत्र और दूसरी ओर 2.5 गोत्र। आगे चलकर इसराइल उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य में विभाजित होगा, उत्तर में 10 गोत्र और दक्षिण में 2 गोत्र। मेरे मित्रों, मिलाप वाले तंबू में पीतल की वेदी मसीह के मोक्षक कार्य की प्रतीक थी। वह एकता का एक स्थान थी। मैं मसीह का महिमान्वय करने वाले प्रत्येक जन से भेंट करने का अभिलाषी हूँ। योनार यीशु समाचार अध्याय 17 पद 20 और 21 में यीशु की प्रार्थना है, कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा तुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। मेरे प्रिय मित्रों, वे जो मसीह में हैं, उनमें एक प्रकार की एकता होती है। पीतल की वेदी मसीह की बलिदान स्वरूप मृत्यु का एक प्रतीक है। जिस प्रकार इन 2.5 गोत्रों द्वारा निर्मित यह रक्त रहित वेदी ने इसराइल का विभाजन किया था, उसी प्रकार मुक्त विचार के धर्म ज्ञानी या धर्म विज्ञान के लोग कलीसिया का विभाजन करते हैं। उन्होंने रूढ़िवादियों पर विभाजन का दोष मढ़ दिया, परंतु सच तो यह है कि मुक्त विचार का धर्म विज्ञानी मसीह के क्रूस और ईश्वरत्व से अलग हो गई है। वे रक्त रंजित वेदी पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने ऐद का निर्माण कर लिया है। वे उस वेदी पर जाकर उपासना करते हैं जहां बलि नहीं चढ़ाई जाती है। उनके पास रक्त रंजित मसीह नहीं है। मेरे मित्रों, इन 2.5 गोत्रों की नाई उनका व्यवहार या चरित्र प्रकट करता है कि वे सत्य से भ्रष्ट हो गए हैं। हमारे प्रभु यीशु ने कहा, तुम उन्हें फल से पहचान लोगे। जी हाँ, सैकड़ों वर्ष बाद प्रभु यीशु मसीह गलील सागर पार करके गिरासेनियों के देश में गया। वहां के निवासी गाद गोत्र के थे और वे अब भी वहां वास करते हैं। वहां यीशु ने एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा किया और दुष्ट आत्माओं को सुअरों में प्रवेश करने की अनुमति दी। मित्रों, इससे स्पष्ट है कि वे सुअर पालन का व्यवसाय करते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक रूढ़िवादी यहूदी सुअर पाल सकता है? वे परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहे थे। यह यर्दन के एक पक्ष में निवास करने का परिणाम है। मेरे मित्रों, मुक्त विचारों ने निस्संदेह कलीसिया का विभाजन कर दिया है। उन्होंने एक सुंदर वेदी बनाई है जिस पर मसीह का लहू नहीं है। ऐसा मसीह तो वास्तव में था ही नहीं, जिसमें ईश्वरत्व न था, जिसमें मनुष्य के उद्धार का सामर्थ्य न था। मेरे प्रियो, क्या आपने यर्दन पार की है? क्या आप मसीह द्वारा दिए गए मुक्ति के विश्राम में प्रवेश किए हैं? आज प्रश्न यह है, क्योंकि आज बहुत से मसीही, बहुत से लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। वे यर्दन पार करना चाहते तो हैं, लेकिन कार्य नहीं करते हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको भी बुलाता है और वह कहता है कि हम भी उस यर्दन के पार चले जाएं, ताकि हम उस मुक्ति के विश्राम में प्रवेश करें। कालेब और यहोशू ने उनके लोगों को उस स्थान तक पहुंचा दिया और वे अपने अपने स्थान को ले लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो आनंदित नहीं हो रहे थे। कारण कि वे इस पार थे और परमेश्वर चाहता था कि वे भी यर्दन के उस पार हों। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, ताकि हम उस आनंद के विश्राम में प्रवेश कर सकें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आपको आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
सुबह शाम दूं मैं सदा यही, सुबह शाम दूं मैं सदा यही, तू ही है जो गिरता को थाम ले, जो दबा हुआ हो गुनाह में, तुझसे नजात का जाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा यही, सुबह शाम दूं मैं सदा यही, तू ही है जो गिरता को थाम ले, सुबह शाम तू मैं सदा यही। मैं ही कील पापों का वो मसीह, जो था छिद गया तेरे हाथ में, मैं ही कील पापों का वो मसीह, जो था छिद गया तेरे हाथ में, वो लहू बहा मेरे वास्ते, वो लहू बहा मेरे वास्ते, हर बूंद मेरा ही नाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा। तेरी राह देखूं मैं हर घड़ी, मेरी रूह तरस तेरे लिए। तेरी राह देखूं मैं हर घड़ी, मेरी रूह तरस तेरे लिए। मेरे आंसुओं में तेरी शमी, मेरे आंसुओं में तेरी शमी। गिरने न दे इन्हें थाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा यही। तूने की अता है मुसर्रते, तू ही चश्मा बुदी हयात का।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तूने की अता है मुसर्रते, तू ही चश्मा बुदी हयात का। मैं जीऊं तो तेरे लिए जीऊं, मैं जीऊं तो तेरे लिए जीऊं। हर सांस तेरा ही नाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा यही। सुबह शाम दूं मैं सदा यही। तू ही है जो गिरतों को थाम ले, जो दबा हुआ हो गुनाहों में, जो दबा हुआ हो गुनाहों में। तुझसे नजात का जाम ले, सुबह शाम दूं मैं सदा।